नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम छूलो आसमान में आपसे रूबरू होंगे प्रोड्यूसर एवं एडवर्टाइजिंग फिल्म मेकर श्री कैलाश सुरेंद्रनाथ। इनसे बातचीत करेंगे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज एवं इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मिट्टरसेन।
हमारे साथ आज हैं कैलाश जी सुरेंद्रनाथ, सेलिब्रेटेड फीचर एंड एड फिल्म मेकर। इनका पोर्टफोलियो इतना लार्ज है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कवर करने के लिए। वेलकम टू ऑल इंडिया रेडियो 100.1 गोल्ड एफएम छोलो आसमान का प्रोग्राम। कैलाश जी, पहले बताइए आपका बैकग्राउंड। आप बेटे हैं सुरेंद्रनाथ जी के, द फेमस म्यूजिशियन, सिंगर, एक्टर।
हाँ जी।
तो ये बताइए, आप खुद भी स्टार मटेरियल हैं, तो आप इस प्रोडक्शन में कैसे आ गए और क्यों एक्टर नहीं बने?
अभी तो बहुत देरी हो गई।
उस टाइम क्यों नहीं बने?
नहीं, एक जमाना था बचपन में, मैं एक बार ज्यादा से ज्यादा कुछ 6-7 साल का था, पापा जी मुझे ले गए महबूब साहब से मिलने, महबूब खान।
यस, महबूब स्टूडियोज।
उन्होंने कहा सुरेंद्र जी मुझे लड़का दे दे। तब सन ऑफ इंडिया बन रही थी मेरे ख्याल में। तो तब तो पापा का राय, पापा की राय थी कि एजुकेशन पहले करो, इसमें ऐसे घुसो नहीं। लेकिन बचपन से मैं
माहौल में थे उसके,
वो माहौल था टेक्नीशियंस का, कैमरामैन, एडिटर सब घर में आते थे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, महबूब साहब सब कहते मिले। तो बहुत इंटरेस्ट हो गया फिल्म मेकिंग में। और उन जमाने में तो फिल्म मेकिंग सेल्यूलर पे थी, थिएटर में डिजिटल तो था ही नहीं। तो उसमें कॉम्प्लिकेशन थी सीखने में, इतना आसान नहीं था, फिल्म इंस्टीट्यूट भी नहीं था। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो इंटरेस्ट जो था, मैं एक्सपेरिमेंट करते करते मौका मिला। पापा की छोटी सी प्रोडक्शन कंपनी थी, जब उनके करियर के एंड पे आए तो उन्होंने कहा कि यही शुरू करते हैं एड फिल्म्स के लिए,
यही कर लो।
तो जब तब तक मैं कॉलेज में जाने वाला था, पहुंच गया था फर्स्ट ईयर में, तो उसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली, इंटरेस्ट हो गया, तो वहां से शुरू हो गया।
कुछ 2 महीने पहले हमने करा था प्रेम सागर जी का इंटरव्यू।
हाँ जी।
उनका भी बहुत बढ़िया बैकग्राउंड था
जी।
और वो माइथोलॉजी के बारे में इतनी बात करे, चीजें हमने कभी सोची भी नहीं थी।
बहुत
ज्ञान मिला उससे। आपने काफी इंस्पिरेशनल नेशनल इंटीग्रेशन पे फिल्म्स करी हैं।
हाँ जी।
तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ?
हाँ जी, ये मेरे ख्याल में मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली। मेरा एक खास दोस्त था एजेंसी में, ओगिलवी मेथर में, का नाम था सुरेश मलिक, अभी वो गुजर गए। तो वो ओल्ड स्कूल डून स्कूल के ग्रुप में था। तो वहां से उन जमाने में राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बुलाया हमको। मेरा नाम भी काफी हो गया था एड फिल्म में, तो हम जाके मिले उनको। उनकी ब्रीफिंग पहले दी उन्होंने कि कुछ ऐसी चीज बनाओ जिससे हर एक यंग इंडियन को गर्व लगे कि हम इंडियन हैं। उन जमाने में क्या था कि हम लोग को, इंडियंस को, फिर भी इंटरनेशनली थोड़ा बहुत थर्ड वर्ल्ड समझते थे। और ग्लोबलाइजेशन के पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी ट्रैवल में, इंडस्ट्री में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, आपको याद होगा। तो बेसिकली क्या है कि इंडियन में इतनी प्राइड नहीं थी, अभी तो बहुत फर्क पड़ गया। तो उसमें क्या है कि उन्होंने काफी खुली ब्रीफ दी कि आप जो सोचते हो करो, लेकिन कोई ऐसी चीज बनाओ जो यंग इंडियंस प्राउड। तो हमने क्या सोचा, वापस आके ब्रेनस्टॉर्म किया कि शायद स्पोर्ट्स काफी पॉपुलर है, स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ पहली फिल्म की टॉर्च ऑफ फ्रीडम। उन जमाने के जो भी स्टार्स थे, गावस्कर, कपिल देव, टेनिस स्टार्स थे, और पीटी उषा थी, उनको लेके सिंपल आइडिया था, ब्यूटीफुल म्यूजिक था, और वहां से शुरू किया। इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला इसमें कि यू नो कि इतना रिस्पांस मिला, क्योंकि अब तक जो है ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा जो ऐसी फिल्में थी इस जॉनर की, फिल्म डिविजन के थ्रू मिलती थी थिएटर में, और वो ज्यादा डॉक्यूमेंट्री टाइप थी, अच्छी थी लेकिन इमोशनल नहीं थी, ज्यादा इंटेलेक्चुअल या इंफॉर्मेटिव थी। तो यहाँ पे जहाँ इमोशनल अपील आया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो हर साल एक अगले साल की मिले सुर मेरा तुम्हारा,
मैं वही पूछने वाला था।
हाँ जी हाँ,
ये तो बहुत फेमस हो गया था,
बहुत ही एंथम टाइप ऑफ स्टेटस हो गया इसका। उसके बाद एक की राग देश, और भी काफी छोटी छोटी की, लेकिन ये थीम जो है फिर हमारे साथ, मेरे नाम के साथ ये थीम जुड़ गई। तो ऐसे काफी करते रहे। अभी रिसेंटली मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फिर मिले सुर किया, जिसमें उसी गाने को लेके करंट स्टार्स हैं उनको फीचर किया। वो ज्यादा लंबी बन गई, तो ज्यादा इंटरनेट पे यूज किया है,
टाइम्स नाउ पे नहीं आती।
हाँ नहीं, टाइम्स के चैनल्स पे तो आई थी उस साल में। तो उसमें सब, मतलब सब तीनों खान है, एक्ट्रेसेस, प्लेबैक सिंगर्स। एक ही कॉमन फैक्टर था उस जमाने से कि अमिताभ बच्चन है उसमें।
अच्छा।
उसमें भी था, इसमें था, रहमान भी था, शंकर लॉय भी थे अभी इसमें। तो वो उसपे आप इंटरनेट पे देखो तो बहुत ही वायरल गया।
अभी हमें गाना सुनेंगे, आपका कोई शौकीन है क्या, या कोई जनर आपको चाहिए?
नहीं, आपने अभी पापा का जिक्र किया है, तो उनका एक गाना सुनते हैं शुरू में। एक गाना है काफी पॉपुलर जो अभी तक मैं सुनता हूँ रेडियो पे, नूरजहान और सुरेंद्र जी का एक डुएट है फिल्म अनमोल घड़ी का, आवाज दे कहाँ है, तो वही सुन लेते हैं।
या बहुत फेमस सॉन्ग है।
हाँ जी, अभी तक फेमस है, नौशाद साहब का म्यूजिक है।
चलिए यही सुन लेते हैं।
किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, विरह है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, विरह है मेरी नींद तारों से ले गवाही, बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बेदर्द आसमां है दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है।
आप अभी सक्सेस आपका सबसे ज्यादा मिला है एड फिल्म्स में।
हाँ जी,
हमने सुना आपने कुछ 3-4 हजार एड फिल्म्स बनाती हैं।
हाँ, क्या है
क्या नंबर इतने तो कैसे कर ले सकते हैं 4 हजार।
ये जब मैंने शुरुआत की, एक तो बहुत साल हो गए, मैं सिर्फ 17 साल का था, और जैसे मैंने कहा कि माहौल था टेक्नीशियंस का, प्रोडक्शन कंपनी का, तो उस माहौल में सीख गया मैं खुद। और ये कॉम्प्लिकेटेड क्राफ्ट थी फिल्म मेकिंग की, क्योंकि इसमें लेबोरेटरी होती थी, डिजिटल तो था ही नहीं उस जमाने में, तो फिल्म कैमराज होते थे और फिजिकल एडिटिंग होती थी जहाँ सेल्यूलॉइड को काटा जाता था, साउंड मिक्सिंग, साउंड
कट करके फिर जोड़ते थे।
हाँ जी हाँ, तो ये सब, हाँ ये सब मतलब इतने सालों से फिल्म मेकिंग की शुरुआत से ये जो है टेक्निक्स चल रही है। तो जब हमने ये शुरू किया करियर, तो मेरे ख्याल में मैं तो पहला यंग प्रोड्यूसर था, बाकी के सब काफी बुजुर्ग थे, जैसे फली बिलमौरिया था, दुर्गा खोटे जी थी, मेरा फादर खुद कर रहा था। तो जब मैं एंट्री हुआ उसमें, तो एक तो नॉवल्टी यही थी कि ये यंग है, और आहिस्ते आहिस्ते वो कॉन्फिडेंस आने लगा एड एजेंसीज में। तो एक किसी जमाने में हम सिर्फ 4 प्रोड्यूसर थे ऑल इंडिया में जो पॉपुलर थे, और पूरे देश का एक्चुअली एडवर्टाइजिंग, और सबसे पॉपुलर मीडियम था सिनेमा, ये सब सिनेमा के एड्स थे, तो पूरे देश की सिनेमा एडवर्टाइजिंग हम संभाल रहे थे प्रोडक्शन में। तो लिटरली एक साल में कम से कम 150 फिल्में बनती थी सब मिला के पर प्रोड्यूसर,
पर प्रोड्यूसर
हम रोज शूटिंग करते थे, रात को एडिटिंग करते थे, कोई था ही नहीं था। लेकिन अभी पूरी सिचुएशन अलग है। अभी क्या है कि मेरे ख्याल में मुझे देख के प्रहलाद, सूरज, जफर है जो मेन प्रोड्यूसर्स थे, सबको देख के काफी यंग पीपल इंस्पायर हुए हैं। एजेंसीज में भी, एडवर्टाइजिंग स्कूल्स में, कॉलेजेस में ट्रेनिंग आ गई है और डिजिटल में काफी कुछ आसान हो गया है। क्रिएटिविटी पे ज्यादा जोर है, टेक्निक पे कम। तो अभी तो बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूसर हो गए हैं।
उसमें आपका एक फेमस हुआ था लिटिल सोप का।
हाँ जी हाँ,
यहाँ पे का तो ओरिजिनल आईडिया
ये मेरा था। और हाँ। ये जो है मेरी पहली एड फिल्म थी।
और फर्स्ट एड फिल्म
मुझे एक्चुअली बाय कोइंसिडेंस लिंटास में बुलाया गया। वहाँ भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं एक्चुअली कॉलेज जा रहा था और अपने गाड़ी में बारिश हो रही थी, तो दो लेडीज थी मरीन ड्राइव पे, उनको मैंने लिफ्ट दी। मैं जेवियर्स कॉलेज में था।
अच्छा।
तो उन्होंने रास्ते में बात पूछी कि आप कहाँ पे रहते, क्या करते हो। तो मैंने कहा मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ और मैं ये हूँ वो हूँ। तो उनको लिंटास में मैंने छोड़ा। फिर बाद में उनका फोन आया कि वो पता लगा कि फिल्म एग्जीक्यूटिव थे वहाँ के।
अच्छा।
उन्होंने कहा कि एक ब्रीफिंग है आपके लिए। तो मैंने जाके देखी ब्रीफिंग। उन्होंने एक ये नया लाइम सोप डिजाइन किया था और उनके कुछ ऑडिशंस या कुछ विजुअल्स थे कि एक लड़की स्विमिंग सूट में वेव्स में खेल रही है। तो वहां से आइडिया शुरू हुआ। तो वहां से मैं गया ऑल इंडिया वाटरफॉल ढूंढा, ऑडिशंस और की, और वहां से आइडिया डेवलप हुआ। स्पेशल एडिटिंग टेक्निक इवॉल्व किया इसके लिए। फिर जब टाइम आया, वक्त आया कि इस फिल्म बनाने का, तो अलिक पदमसी जी थे हेड ऑफ द एजेंसी, उन्होंने कहा कि आप बहुत यंग हो, तो आपको अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, हमारा टॉप क्लाइंट हिंदुस्तान लीवर, अगर आपको ये असाइनमेंट देनी है तो आपको कोई एडवांस नहीं मिलेगा, अपने रिस्क पे करो।
अच्छा।
तो वो मैंने कर लिया और वहां से तो करियर की शुरुआत। यस यस, पता नहीं अजीब बात है, कहीं से कहीं ना कहीं से एक हिट निकल आती है।
ये दुनिया का रीत है, अपने कुछ करने निकलते हैं और कुछ और पहुंच जाते हैं, कहीं और जगह पहुंच जाते हैं। एक गाना सुन ले अभी।
मिले सुरु मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, सुर की नदियां हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा।
ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
कहां दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा।
ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा।
ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा,
मुहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे आरज़ू और क्या,
ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। रहे साथ जब तक ये बंधन न टूटे,
तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा।
ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
कहां दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा।
तो हम जानना चाहते हैं कि एक चीज तो है जो हम देखते हैं और उसके पीछे क्या है, ये तो आपके जैसे लोग ही बता सकते हैं।
नहीं बाप, मैंने काफी ब्रांड्स किए हैं जो शुरुआत में प्रोड्यूस किए हैं, वहाँ से जाके आइकॉनिक ब्रांड्स हो गए।
ओके,
जैसे आप देखो निर्मा,
निर्मा आपका है?
निर्मा मैंने शुरू में किया,
क्या उसका है वो निर्मा
वॉशिंग पाउडर,
वॉशिंग पाउडर निर्मा,
और उनके काफी प्रोडक्ट्स किए हैं, सब सोप्स वगैरह,
पर फेमस तो यही है।
हाँ, ये बहुत फेमस है क्योंकि वो शुरू में पहले तो सिनेमा में थे, उसके बाद पहले मूवर थे टीवी पे, जब दूरदर्शन कमर्शियल हुआ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे,
20-25 साल हो गए ये चीज।
हाँ जी, कितने साल हो गए। और वहां से फिर विमल के सब एड्स किए, विमल तो फ्लैगशिप कंपनी थी रिलायंस, तो विमल के सब एड्स किए सारी शूटिंग्स वगैरह, तो मेरे को काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले शुरू में टॉप ब्रांड्स बनाने के लिए। फेयर एंड लवली, लीवर्स के तो बहुत ही किए, रेन सर्फ वगैरह, वो ललिता जी जो है कहती है कि असली समझदारी की बात करती है, तो ये सब हमने कम करते गए।
तो इसका म्यूजिक का भी बैकग्राउंड स्कोर आप ही देते थे, बिकॉज तो खुद ही म्यूजिशियन है, निर्मा का इतना फेमस है अभी भी वो दिमाग में घूमते रहता है,
नहीं,
अभी
नहीं,
भी वो भी यूज करते हैं उसको,
अभी तक यूज करते
हैं।
ऐसे काफी ट्यून्स है विमल का भी, अभी तक तो विमल इतना बड़ा ब्रांड नहीं है,
ओनली विमल।
मैंने विमल क्या किया, मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करता था, तो जो डायरेक्टर की कंट्रीब्यूशन होती है म्यूजिक में, थोड़ा बहुत म्यूजिशियन हूँ ज्यादा नहीं, लेकिन जहाँ तक डायरेक्टर की कंट्रीब्यूशन होता है वो तो होती है।
आपके पिताजी तो म्यूजिशियन ही तो थे,
वो तो थे,
तो वो तो आपके ब्लड में ही चल रहा है
जरूर। मैं थोड़ा गिटार भी बजाता हूँ।
ओके,
और क्या, बचपन से आए हैं रियाज सुनते,
ग्रोन अप इन म्यूजिक,
घर में हर वक्त
चलती
कोई तबलची होता था, हारमोनियम और महफिल जमती थी घर में, तो वो तो शुरू से मैं देख रहा हूँ।
एक और बात आपके पोर्टफोलियो में से निकली जो मुझे नहीं पता थी पहले,
हाँ जी,
कि आपने काफी बड़े एक्टर्स को भी लॉन्च कराए, ये कैसे हो गया? सलमान खान, जैकी श्रॉफ, ऐश्वर्या राय बच्चन, अर्जुन रामपाल, तो ये किस्सा कहाँ से निकला?
ये जो है ना,
ये पहले एडवर्टाइजमेंट में,
हाँ जी, नहीं, क्या है कि हर एक जो है टैलेंट अपनी अपनी डेस्टिनी के साथ आता है अपने फील्ड में, तो मैं नहीं तो और कोई लॉन्च कर लेता, लेकिन किस्मत है कि मैं, क्या है कि सलमान जी के साथ इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो उन्होंने खुद भी सुनाई है काफी बार वो कॉफी विद करण के शो पे और काफी इंटरव्यूज में, कि हम जा रहे थे उन दिनों में कोला था, कैंपा कोला, हम जा रहे थे पहली बार अंडर वाटर एड शूट करने के लिए अंडमान आइलैंड्स में, तो अब मैंने सोचा कि स्विमर्स चाहिए, सब अच्छे स्विमर्स, डाइवर्स, तो बाकी के मॉडल सब फिक्स हो गए, मेरी वाइफ थी तब आरती, शी वाज अ मॉडल, और अच्छे टॉप मॉडल्स थे, मेरे को याद है सुनील निश्चल मेरा अभी तक अच्छा दोस्त है, नवीन निश्चल का भाई, और एक और मॉडल की जरूरत थी, तो आरती का फोन आया, उनके फादर जो है एक्स मेजर थे, वो एक स्विमिंग पूल के क्लब के इंचार्ज में थे, प्लेमेट क्लब वहाँ पे सी रॉक में, तो उन्होंने कहा कि एक लड़का है यहाँ,
अच्छा,
जो बहुत अच्छा स्विमिंग डाइविंग करता है, तो आप उसको ट्राई कर लो। तो आरती जी गई देखने के लिए, उन्होंने देखा कि हाँ ये अच्छा डाइव करता है, स्विमिंग कर रहा है, वो भी थोड़ा शो ऑफ कर रहा था, सिर्फ 15 साल का था, और मैं तो कम से कम 10-11-12 साल उनसे बड़ा हूँ। फिर आरती ने उनको ऑफिस में भेजा, ऑफिस में मैंने कहा किसको भेज दिया आपने, तो बच्चा है, कहा नहीं नहीं आप, बाकी के सब लंबे चौड़े 6 फुट के मॉडल थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं उसको बोलो शर्ट उतारे, तो मैंने कहा ऑफिस में शर्ट उतारो, देखा अच्छे मसल्स हैं, बॉडी है, और 2-4 दिन में जाना था, तो उसको फिक्स कर दिया, और वहां से तब तक और आज तक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं हम, बहुत मिलते जुलते हैं, बहुत हंसते हैं, काफी कुछ समय साथ में बिताया कि स्ट्रगल के पीरियड में, स्टार्टअप के पीरियड में।
एक गाना सुन ले यहाँ पर,
परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों बेनाम सी उलझन, जैसे मिले हों दूर
क्यों है, आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है, मेरे सवालों का जवाब दो। तो ना मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी।
तो सलमान की किस्मत आपके जरिए
थी, ऐसे कभी क्लेम कर नहीं सकता क्योंकि
फैक्ट तो है, आप नहीं करेंगे, हम बोल रहे हैं ये तो।
उनका तो मुकद्दर लिखा ही था,
हर एक का लिखा हुआ रहता
तो
रास्ता क्या है अपने आप निकलते जाता है।
एग्जैक्टली। अच्छा, जैकी जो है वालकेश्वर रोड पर रहता था, मैं भी वहाँ पर रहता था,
बैकग्राउंड पता है।
तो मैंने देखा है कि रोज रात को जब मैं उठता था कोई झगड़े के साथ, झगड़े की आवाज के साथ,
तो ये
बारी से देखता हूँ, देखता हूँ तो नीचे जैकी का कुछ लफड़ा चल रहा है। तब तो मॉडल भी नहीं था, तो उसको भी शुरू कर दिया मॉडलिंग में।
कैसे आ गए?
अच्छा, गुड लुकिंग बॉय था।
yes.
नीचे जाके कुछ सॉल्व करके मैंने कहा था चल तू काम शुरू कर मेरे साथ। तो एक ऐसा वक्त आ गया, कभी वो तो शौकीन था अच्छे कपड़ों का, अच्छे गर्लफ्रेंड्स थे, बाहर जाता क्लब जब सलमान भी बहुत शौकीन था। तो जैकी ने कहा तो कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो आ जाता था, कहता तुम अभी दे दो, अगले हफ्ते कोई ऐड कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है,
मैं भी जानता हूँ जैकी को, तो वहां से मिलना होता था काफी।
लेकिन जैकी भी कभी भूलता नहीं है, बहुत अभी तक कॉन्टेक्ट में,
बहुत डिसेंट
आदमी, बहुत ही अच्छा दोस्त है और बहुत ही वार्म था की और उसके फैमिली की हमारे साथ, क्योंकि वो एक चीज है
उनका फेमस वर्ड है ना, अरे बिडू क्या कर रहा है, चल चलते हैं कहीं।
एब्सोल्युटली, वो उसकी लैंग्वेज जो है वहाँ की भी है और सोफिस्टिकेटेड भी है,
दोनों इज अ मिक्स ऑफ ऑल,
बहुत ही वेल राउंडेड कैरेक्टर है वो।
कमिंग बैक टू द ब्रांड्स, मेन ब्रांड्स क्या आपने करे जो चार पर, अभी एक दो तो आपने बताया इधर लिटिल और एक दो और, तो अब कौन से ब्रांड्स का कर रहे हैं?
मैं आजकल जो है ना ज्यादा, अब जो रिसेंटली है काफी अमूल के एड्स किए। मेरा दोस्त है राहुल डिकोना, उनकी एजेंसी है डिकोना एसोसिएट्स जो बहुत अमूल के साथ काम करते हैं, तो काफी सालों से कर रहा हूँ, तो हर साल 5-6 एड्स जो अमूल के तो हो ही जाते हैं। फिर रिसेंटली किया है कुकवेयर के, काफी विनोद कुकवेयर वगैरह, फिर ये भी किया है जैगुआर के लिए जो गाड़ी है इवोक, तो काफी करते रहते हैं हम, अभी जो भी ब्रांड आए हम कर लेते हैं। तो उसमें क्या है कि कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होते, हम एड एजेंसी के लिए काम करते हैं, क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो कभी कभी कॉर्पोरेट काम हो जाता है
तो आपको सब कॉन्ट्रैक्ट करना
है, सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी काम आए हम जरूर करते हैं। तो वो जो है अपना इनपुट देना पड़ता है स्क्रिप्ट्स पे, ट्रीटमेंट पे, लेकिन कर लेते हैं जो भी है। और ये करंट ब्रांड्स जो है हम कर रहे हैं आजकल। और एक और नया मॉडल शुरू है इस बिजनेस में कि उन जमाने में तो मैं एक ही डायरेक्टर था कंपनी का, और जो भी प्रोडक्शन कंपनी ओन करता था वो खुद डायरेक्ट
करते थे।
आजकल हम बहुत आउटसाइड डायरेक्टर्स को हायर करते हैं, जैसे थोड़ा काम अभी रिसेंटली किया है फॉरेन डायरेक्टर्स के साथ भी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिए, फिर उसके अलावा इंडिया में भी पुनीत मल्होत्रा के साथ काफी काम किया है, और ऐसे अलग अलग डायरेक्टर्स को लेके उनको भी यू नो आगे लाते हैं। तो उसमें क्या है कि और भी काम बढ़ सकता है। मैकडॉवेल्स का भी एक किया था, उसमें सोनाल डोबराल जी हैं, बहुत टैलेंटेड क्रिएटिव डायरेक्टर, आजकल ONM को हेड कर रहे हैं, तो उनके साथ भी एक डायरेक्शन की थी।
याद किया, ओ तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया।
तो आपके फादर के बारे में फिर से बात करेंगे थोड़ी सी। वो एक्टर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, तो गाते भी थे क्या?
हाँ, उन जमाने में प्लेबैक नहीं था।
हाँ।
मेरे फादर जो है वो BA LLB थे, लाहौर लॉ कॉलेज के। तो कहा जाता है कि उन जमाने का सिर्फ एक ही एजुकेटेड एक्टर था और वो थे सुरेंद्र जी। तो अभी तक उनको सुरेंद्र साहब कह के जिक्र करते हैं। जैसे कभी मैं कभी सलीम साहब को मिलता हूँ, सलमान के फादर को, तो कहते हैं कि देखो आपके फादर को अभी तक साहब कहते हैं। तो और वो भी बहुत शौकीन है पुराने।
आज के जमाने में तो सारे एजुकेटेड है।
तो क्या है कि ये जब आए थे हॉलीडे के लिए तो फिल्मों में आ गए, इसने शायद डिस्कवर किया होगा।
हाँ।
और कई पार्टी वार्टी में देखा होगा गाते हुए।
आपके तो जैसे हैंडसम थे क्या वो?
हाँ जी,
आपके जैसे हैंडसम थे क्या वो भी?
वो तो मेरे से बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे।
टॉलर भी थे।
टॉलर भी थे और बहुत ही, तो लाहौर के थे, पंजाब के, 35 से लेके 50 तक हीरो थे और उसके बाद कैरेक्टर रोल्स किए काफी। तो 50 के पहले तो प्लेबैक बहुत कम था,
था
ही नहीं, अराउंड दैट टाइम शुरू हुआ। तो सब हीरो अपने गाने गाते थे, सब हीरोइन अपने गाने रहे थे उनकी खास आवाज थी तो उनको बॉम्बे का केएल सहगल माना गया। केएल सहगल जो है उनसे सीनियर थे लेकिन उनके कंटेम्पररी भी थे कलकत्ता से, तो जो मैंने देखा है उनकी इंटरव्यूज में मतलब ये सब स्टारडम जो थी मेरे जन्म के पहले थी, लेकिन फिर भी जो भी मैंने सुनाया जो भी बातें सुनी है मेरे को ऐसे कि केएल सहगल जी के जो है आंसर थे यहाँ पे जवाब थे यहाँ के स्टूडियो के, तो वो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अबाउट 150 मैंने एक वेबसाइट भी बनाई है उनके लिए और जस्ट उनके मेमोरी में, क्योंकि क्या है कि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, कहीं ना कहीं याद आना चाहिए कि वो भी कोई थे।
अभी भी इंस्पायर करते हैं क्या आपको जब भी आप काम करते हैं, कुछ है अंदर आपके उनका भी?
म्यूजिक का तो एक बहुत ही अच्छा शौक है और वो बहुत पढ़ते थे लिटरेचर, खास करके इंग्लिश लिटरेचर, और मेरे ख्याल में बचपन से उनके साथ इतना टाइम और इतने गजलें सुनकर थोड़ी बहुत उर्दू भी आ गई तो उर्दू भी अच्छी समझ में आती है मुझको। लेकिन क्या है कि अगर मैं अभी देखूं पीछे तो उनकी टीचिंग्स तो बहुत ही खास थी मेरे लिए। एक तो उन्होंने मेरे को हर वक्त कहा था कि फिट रहो, हेल्थ पे बहुत एम्फेसिस,
वॉक करते देखता हूँ एक घंटा क्लब में,
स्पोर्ट्स पे बहुत एम्फेसिस, तो मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ टेनिस भी खेलता हूँ उनकी वजह से। उन्होंने फॉर्चुनेटली हमको सब क्लब्स के मेंबरशिप दिए बॉम्बे में, तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी भी मिली स्पोर्ट्स के लिए। और दूसरी बात क्या है कि उनकी वजह से, उनके कॉन्टैक्ट्स की वजह से एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उनकी रिस्पेक्ट की वजह से जो लोग कदर करते थे उनके लिए, तो अच्छी सोसाइटी में अच्छे कॉर्पोरेट्स में मैं जाके मिल सकता था कि मुझे काम दो या तो वो प्लेटफॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है
बाद में। तो आपका काम अपने आप के लिए बात
वो तो है ही, लेकिन एक फॉर्चुनेट एक बहुत ही
स्टार्ट मिल गया उससे। अभी अपना ऐश्वर्या राय जी का गाना सुन ले।
मैं तेरे वास्ते मैं तुझको जान लूं तू मुझको जान ले आ दिल के पास आ दिल के रास्ते जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है इस ताल मिला ओ ताल से ताल मिला
दिल ये बेचैन वे रास्ते पे नैन वे जिंदगी बेहाल है सुर है ना ताल है आ जा सावरिया ताल से ताल
थोड़ा टच करेंगे हम आपके मिसेस पे
हाँ जी
मिस आरती तो आप बता रहे थे कि वो भी एक्ट्रेस थी और हाँ। अभी आपकी पार्टनर हैं या हेल्प करती हैं आपको
एक्चुअली वो तो बॉस हो गए अभी
बॉस हो गए अरे, अरे, अरे वो तो हमेशा ही होता है मिसेस तो बॉस हो गए
लेकिन फिर भी कंपनी में भी घर में भी लेकिन वो जब मैं उनको पहले मिला था वो मॉडल थी तो मैं एक लड़की ढूंढ रहा था
उनको पता नहीं था रहता हम उनको भी बुला लेते
अच्छा
चलो अगले बार
कभी बुला लो उनका भी बहुत इलस्ट्रियस कैरियर हुआ तो मैं सोच रहा था कि एक अच्छे बालों वाली लड़की ढूंढ रहा था सनसिल्क शैम्पू के लिए तो काफी है फिर से उन दिनों में सुपर एट पे टेस्टिंग की और जब आरती जी को मिला तो उनके साथ कंफर्म हो गए तो फिर हम गए कोडीकनाल शूटिंग में वहां पे रिलेशनशिप शुरू हुई और उसके बाद बहुत ही मॉडलिंग की उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स की वो गार्डन साड़ीज मेरे को याद है
अच्छा
एक वो जॉनसन एंड जॉनसन की कैफ्री ये सब आइकॉनिक कैंपेन्स किए उन्होंने और उसके बाद फिल्मों में आ गई नेचुरली तो जानबाज की मिथुन के साथ फिल्में की थी एक मनीष के साथ पुराना मंदिर का अच्छी फिल्में की और उसके बाद दोनों बिजी थे करियर बनाने में तो वक्त मिला ही नहीं शादी करने के लिए तो मेरे ख्याल में रिलेशनशिप शुरू होने से कम 10-12 साल लग गए डेट फिक्स करने के लिए कि अभी शादी करनी चाहिए एंड आफ्टर मैरिज क्या है ये इंडस्ट्री भी ऐसी है कि बहुत मुश्किल है गर्ल्स को इतनी देर स्टे करना करियर में और हीरोइन स्टे करना और ऑटोमेटिकली वो मेरे काम में इंटरेस्ट लेने लग पड़ी बहुत ही टैलेंट है स्टाइलिंग में डिजाइनिंग में प्रोडक्शन में तो आजकल सब काम वही संभालते हैं मैं कोशिश करता हूँ सिर्फ क्रिएटिव रहने के लिए
क्योंकि आप फिल्म लाइन से हैं
हाँ जी
आपको खुशी होगी ये सुन के कि अभी मैं क्या ना बुक लिख रहा हूँ मैं तो बुक लिखता हूँ वैसे भी ऑथर हूँ ऑन 9 ओल्ड फेमस एक्टर सेलिब्रिटी
लवली हाँ
तो अभी अभी आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया है मनोज कुमार जी के बेटे
हाँ
से अब उनसे शुरुआत करेंगे
हाँ।
फिर हम धीरे धीरे करके 6 महीने में बुक रिलीज
बहुत अच्छा
इट जस्ट टू ब्रिंग बैक देयर मेमोरीज और उसमें हम डिजिटल भी बनाएंगे
बहुत ही अच्छी आइडिया
तो उसके साथ साथ में बुक में तो कुछ लिमिटेड ही आता है लेकिन डिजिटल में क्या करेंगे उनके क्लिपिंग्स लगा देंगे उनके बात जो भी है जो उनका इंटरव्यू करेंगे वो भी लाइव कर देंगे अगर वो चाहेंगे तो
ये तो बहुत अच्छी सीरीज बन सकती
yeah,
है
तो एक सीरीज बना रहा हूँ ऑफ बॉलीवुड या इंडियन फिल्म्स
तो
स्टार्टिंग विद एक्टर्स बाद में हम जाएंगे प्रोड्यूसर्स पे म्यूजिशियंस पे तो उसमें कम से कम 6-7 बुक्स बन सकती
जिन्होंने क्लासिक काम
जो क्लासिक काम करे हैं पहले के
अभी क्या है कि बहुत कम बचे हैं जो लेजेंड्स हैं लेकिन जो भी है उनके साथ जल्दी काम शुरू
अभी
धर्म जी है
पुटिंग तो धर्म जी का अभी परसों ही मैंने लिस्ट में लिया है धर्म जी को वैसे है मेरे पास एक्चुअली लिस्ट 43 की हो गई है
अच्छा
तो मैं ट्राई कर रहा हूँ एक एक का कांटेक्ट निकाल के जाके बात करूँ
मैंने उनके साथ एक ऐड किया है
अच्छा
मेरी किस्मत है कि मैंने एक ऐड किया है उनके साथ तो बहुत ही मजा आया बहुत ही अच्छी मीटिंग्स हुई इनके साथ
हम थोड़ा फ्यूचर में चले जाएं
हाँ जी
आपने ना विद न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी वेब सीरीज OTT ये सारा आपने भी वो भी शुरू कर दिया
हाँ जी
तो क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं इसमें
एक्चुअली क्या है कि टेक्नोलॉजी तो बदलती गई है शुरू से और टेक्नोलॉजी के साथ बहुत चेंजेस आए हैं आप देखो तो सिनेमा से टेलीविजन टेलीविजन से इंटरनेट और अभी इंटरनेट से जो एक्चुअली ऑडियंस की हैबिट है ब्रॉडबैंड जैसे फास्टर हो गया ज्यादा स्प्रेड हो गया इंडिया में तो ज्यादा लोग फोन पे कंप्यूटर पे या कंप्यूटर को टीवी
कंज्यूम ये डिवाइसेस से करते हैं,
सब कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो अभी हमने एक वेब सीरीज शुरू की है और उसके आगे जाके और भी करनी है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी 5-10 साल ये ज्यादा डेवलप होने वाला है। जैसे मैंने कहा आपको कि एड फिल्म्स तो करते रहेंगे, लेकिन एड फिल्म्स एक थोड़ी सी क्राउडेड फील्ड हो गई है, ज्यादा लोग हो गए जो प्रोड्यूसर हैं, तो काम डेफिनेटली उन जमाने के जैसे इतना बिजी नहीं है। तो अभी इसमें और इसमें क्या है कि स्टोरी टेलिंग का अलग मजा है, स्टोरी टेलिंग में जो मजा है और ये जो टेक्निक है सीरीज का, मुझे सीरीज देखने में भी बहुत मजा आता है और तो बनाने में भी और भी मजा आएगा।
तो फ्यूचर में जाके क्या है ये थिएट्रिकल रिलीज और टीवी को इम्पैक्ट करेगा ये
मेरे ख्याल में,
या सब साथ साथ चलेगा?
जो बहुत बड़ी फिल्में हैं जो मैग्नम ओपस है
थिएटर में आएंगी,
वो तो थिएटर में मजा आएगा देखने के लिए, लेकिन जो ड्रामाज हैं वो लोग घर में जो देख सकते हैं फोन में जो देख सकते हैं जरूर देखेंगे, क्योंकि क्या है कि थिएटर जाना भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है जो एवरेज फैमिली के लिए। तो एक फैमिली जाए पिक्चर देखने तो 1000 रुपए से ज्यादा ही खर्चा होगा।
अगर मैंने कुछ मिस करा है ये क्वेश्चंस में, आपको कुछ बोलना है तो बताइए हमारे दर्शकों।
बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर एक फील्ड में हर एक करियर में जो यंग पीपल है उनको एक ड्रीम रखना चाहिए, एक ख्वाब रखना चाहिए कि कहाँ पहुँचना है और उसकी तरफ ठीक तरह से हार्ड वर्क करके चल के सीख के वहाँ जरूर पहुँच जाएंगे, लेकिन वो ड्रीम बहुत जरूरी है। तो ये मेरे ख्याल में एक एडवाइस दे सकता हूँ फिल्म मेकर्स को,
एस्पायरिंग फिल्म मेकर,
और आप इमेजिनेशन पे सोचते जाओ कि क्या करना है, कैसी कहानी बतानी है और करते जाओ। कंटेंट तो रहेगा टॉप मोस्ट एंटरटेनमेंट इंडिया में।
अब आप सुन रहे थे कैलाश सुरेंद्रनाथ जी को, आपने बात तो उनकी सुनी ली। मैं हूँ विकास मित्र सेन, CMD नजारा टेक्नोलॉजी एंड प्रेसिडेंट ऑफ IBG चेंबर ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सर।
थैंक यू।
श्रोताओं 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छूलो आसमान में प्रोड्यूसर एवं एडवर्टाइजिंग फिल्म मेकर श्री कैलाश सुरेंद्रनाथ से की गई चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज एवं इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मिट्टर सेन की बातचीत। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। सहयोग सृष्टि जाधव एवं कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।